अक्सर जब हम शाम की खबरें देखते हैं ना,
हाँ,
तो एक अजीब सी बेचैनी होती है।
हाँ बिल्कुल,
मतलब स्क्रीन पर दुनिया भर की उथल पुथल चल रही होती है। कोई नया साम्राज्य खड़ा हो रहा है, या किसी देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है।
और कहीं युद्ध के बादल भी मंडरा रहे होते हैं।
एकदम सही का। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। एक बहुत बड़ी और डरावनी अराजकता है। हम बैठकर सोचते हैं कि आगे क्या होगा, क्या ये दुनिया किसी बड़े विनाश की तरफ बढ़ रही है।
और आपको पता है, यही डर, यही घबराहट प्राचीन काल के लोगों में भी थी।
बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम प्राचीन इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलट रहे हैं। हम डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट के एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्यान पर चर्चा कर रहे हैं, जो यशाया के अध्याय 14 से 16 का गहराई से विश्लेषण करता है।
और ये बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय में।
हाँ, दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पुरानी वो भू राजनीति आज की न्यूज बुलेटिन की कार्बन कॉपी लगती है, और हमारा मकसद है इसी समानता को समझना बिना किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लिए।
सही बात है, चाहे वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, हमें किसी का पक्ष नहीं लेना है।
बिल्कुल। हम सिर्फ इतिहास के तथ्यों और इस मूल संदेश का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे कि आखिर राष्ट्रों और इंसानी ताकतों पर अंधा विश्वास करना क्यों खतरनाक है।
ये एक बहुत ही जरूरी विषय है। देखिए, जब हम ताकतों को आपस में टकराते हुए देखते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि जो राष्ट्र या नेता सबसे ज्यादा ताकतवर है, वही इतिहास की दिशा तय कर रहा है।
हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है।
प्राचीन दुनिया में भी लोग सत्ता पर दिखने वाली इस ताकत से बहुत जल्दी भयभीत हो जाते थे। डॉक्टर ओसवाल्ट के विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत बड़े परिदृश्य से होती है, जहां बेबीलोन का जिक्र है।
बेबीलोन, जो कि उस समय का एक बहुत बड़ा नाम था, है ना?
बिल्कुल। बेबीलोन उस समय संपूर्ण मानव जाति की महिमा, भव्यता और अहंकार का एक वैश्विक प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे हम यशाया के 14वें अध्याय में आगे बढ़ते हैं, नजरिया थोड़ा बदलता है।
अच्छा, वो कैसे?
बेबीलोन सिर्फ एक प्रतीक था, लेकिन असली जिंदगी का तत्कालीन और खूंखार खतरा कोई और ही था। वो था अश्शूर, जिसे असीरिया का साम्राज्य भी कहा जाता है।
अश्शूर यहूदा के लोगों के लिए वो कोई दूर का दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि एक खूंखार सैन्य मशीन थी जो एकदम उनके दरवाजे पर खड़ी थी।
एकदम सही।
लेकिन यहां ना एक बात मुझे बहुत हैरान करती है। इस पूरे वृत्तांत में मैंने देखा कि उद्देश्य और योजना जैसे शब्द करीब 5-6 बार दोहराए गए हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहीं पर सारा भ्रम टूटता है। अश्शूर को लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से दुनिया जीत रहा है। उसे अपने सैन्य बल और अपनी क्रूरता पर बहुत घमंड था। लेकिन यशाया का संदेश ये था कि अश्शूर की अपनी कोई स्वतंत्र योजना नहीं है। वो अनजाने में ही सही, लेकिन उस सर्वोच्च सत्ता की योजना का एक हिस्सा मात्र है।
अरे वाह।
हाँ, अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ईश्वर दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों का इस्तेमाल एक उपकरण की तरह करता है, ताकि वह अपने लोगों को अनुशासित कर सके।
रुकिए, अगर सब कुछ एक सर्वोच्च सत्ता की योजना के तहत हो रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अश्शूर सिर्फ एक कठपुतली था?
ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। इंसान के पास चुनाव की आजादी होती है, लेकिन उसकी आजादी सर्वोच्च सत्ता की अंतिम योजना को बाधित नहीं कर सकती।
चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए इसे हम आज की कॉर्पोरेट दुनिया के चश्मे से देखें।
अच्छा, बताइए कैसे।
ये बिल्कुल एक जबरन अधिग्रहण, मतलब जिसे कॉर्पोरेट भाषा में हॉस्टाइल टेकओवर कहते हैं ना, वैसा लगता है। एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, उसका एक बहुत ही आक्रामक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो एक एक करके छोटी कंपनियों को निगल रहा है।
बहुत बढ़िया उदाहरण।
बाहर से देखने पर लगता है कि वो अधिकारी अजय है, वही सब कुछ तय कर रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे कोई और बड़ा सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो उस आक्रामक अधिकारी की चालों का इस्तेमाल अपनी किसी बहुत बड़ी और गुप्त योजना को पूरा करने के लिए कर रहा है।
बिल्कुल सटीक, अश्शूर वही आक्रामक अधिकारी था, और पर्दे के पीछे की शक्ति ने अपना प्रभाव कैसे दिखाया, ये इतिहास गवाह है। स्रोत में 37वें अध्याय का जिक्र है, जहां यरूशलेम की घेराबंदी के दौरान रातों रात 1,85,000 अश्शूरी सैनिक मारे गए थे।
बापरे, 1,85,000!
हाँ, और अश्शूर का शक्तिशाली राजा सन्हेरिब अपनी बची कुची सेना लेकर वापस लौट गया था। यहां एक मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, विस्तारित हाथ।
विस्तारित हाथ,
हाँ। इसका संदेश ये है कि चाहे अश्शूर की मुट्ठी कितनी भी कसकर क्यों ना बंदी हो, अंतिम प्रहार उस सर्वोच्च सत्ता के हाथ से ही होना था।
तो अगर अश्शूर जैसी महाशक्ति भी सिर्फ एक उपकरण थी, तो उन पड़ोसी देशों का क्या हुआ जो सत्ता के इस खेल में अपनी चालें चल रहे थे?
यही तो बात है,
क्योंकि जब कोई महाशक्ति कमजोर पड़ती है तो छोटे देश अक्सर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से डॉक्टर ओसवाल्ड का विश्लेषण पलिश्तियों की ओर मुड़ता है ना?
बिल्कुल। 716 ईसा पूर्व के आसपास यहूदा के राजा अहाज की मृत्यु होती है।
और अहाज पलिश्तियों का कट्टर दुश्मन था।
हाँ, और जैसे ही अहाज के मरने की खबर आती है, पलिश्ती जश्न मनाने लगते हैं। और ये इंसान की एक बहुत ही पुरानी फितरत है, हम किसी तात्कालिक राजनीतिक बदलाव या किसी नेता के जाने को अपनी अंतिम जीत मान लेते हैं।
सही कहा।
पलिश्तियों को लगा कि उनका सबसे बड़ा कांटा निकल गया और अब वे पहाड़ी इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ थोड़ा भौगोलिक संदर्भ समझना जरूरी है।
बताइए।
यहूदा का इलाका पहाड़ी था, एक ऊंची जगह पर बसा हुआ, और पलिश्तियां तटीय इलाका था। इन दोनों के बीच की जो ढलान वाली जमीन थी, जिसे लोलैंड्स कहते हैं, वहां हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी।
अच्छा, मतलब पलिश्ती हमेशा नीचे से ऊपर पहाड़ की तरफ बढ़ना चाहते थे और यहूदा के लोग ऊपर से नीचे तट की तरफ आना चाहते थे। भी दुनिया के कई हिस्सों में देखा जाता है।
हाँ, लेकिन यशाया पलिश्तियों को चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जश्न मत मनाओ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अकाल और विनाश से भरा है।
और इतिहास गवाह है कि आज पलिश्ती नाम का कोई राष्ट्र अस्तित्व में ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, जबकि यशाया ने कहा था कि यहूदा का भविष्य सियोन में सुरक्षित रहेगा। पलिश्ती इस बात को समझ ही नहीं पाए कि अहाज के मरने से उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है।
जब मैं ये हिस्सा पढ़ रही थी ना, तो मुझे जॉर्ज वॉशिंगटन का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन याद आया। वॉशिंगटन ने अमेरिका के शुरुआती दौर में कहा था कि उलझाने वाले गठबंधनों से बचें, एंटैंगलिंग अलायंसेस।
बहुत ही सटीक बात है।
पलिश्तियों ने भी शायद यही गलती की, लेकिन क्या सच में दूसरे राष्ट्रों या राजनीतिक गठबंधनों पर निर्भर रहना इतिहास का सबसे बड़ा जाल है? आखिरकार गठबंधन तो कूटनीति का एक बहुत व्यवहारिक हिस्सा होते हैं ना?
देखिए, गठबंधन व्यवहारिक लग सकते हैं, लेकिन जब उनकी बुनियाद डर और सत्ता के स्वार्थ पर टिकी होती है, तो वे बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जब आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश की सैन्य ताकत या किसी नेता पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, तो आप अपनी नियति उनके हाथों में सौंप देते हैं। यशाया का संदेश यही था कि राजनीतिक गठबंधनों की झूठी सुरक्षा पर भरोसा करने से बेहतर है कि सही मार्ग पर चला जाए।
ये सच में विचार करने लायक बात है। पलिश्ती तो खुले दुश्मन थे, उनके साथ लड़ाई साफ थी, लेकिन उन देशों का क्या जिनके साथ रिश्ते थोड़े करीब के थे?
हाँ, जैसे कि मोआब।
बिल्कुल, डॉक्टर ओसवाल्ड हमें मोआब की कहानी की ओर ले जाते हैं, और मोआब का जो हश्र हुआ वो बहुत ही झकझोरने वाला है।
मोआब की स्थिति थोड़ी अलग थी। जब अश्शूरी सेना उत्तर की ओर से एक विनाशकारी आंधी की तरह हमला करती है, तो मोआब के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वे अपनी जान बचाने के लिए दक्षिण की ओर भागने लगते हैं।
और भागते हुए वे खाली हाथ नहीं है। विश्लेषण में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उकेरी गई है कि कैसे मोआब के लोग अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा भारी भरकम सामान लाद कर एक नदी जिसे ब्रुक ऑफ द विलोज कहा गया है, उसे पार कर रहे हैं।
हाँ, ब्रुक ऑफ द विलोज को पार करते हुए
तबाही पीछे आ रही है और वे अपना सामान ढोने में लगे हैं।
और यहीं पे भौतिकवाद का मतलब मटेरियलिज्म का एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। इंसान का अपनी संपत्तियों से मोह इतना गहरा होता है कि मौत सामने खड़ी होने पर भी वो इन्हें छोड़ नहीं पाता। डॉक्टर ओसवाल्ड इसे समझाने के लिए आधुनिक इतिहास के दो बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध का है।
अच्छा, क्या हुआ था उसमें?
जब नाजी सेना फ्रांस में पेरिस की तरफ बढ़ रही थी, तो हजारों शरणार्थी सड़कों पर भाग रहे थे। ऐतिहासिक तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वे लोग अपनी कारों की छतों पर भारी भरकम गद्दे, बच्चों की गाड़ियां यानी बेबी बगीज, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल भी अपने साथ घसीट कर ले जा रहे थे।
डाइनिंग टेबल, अरे जब आपकी जान पे बनी हो तो डाइनिंग टेबल का क्या काम।
यही तो इंसान का मनोविज्ञान है। जब दुनिया हाथ से फिसल रही होती है, तो इंसान उन चीजों को कसकर पकड़ लेना चाहता है जो उसे सामान्य जीवन का एहसास कराती हैं।
ये तो बहुत ही गहरी बात है।
और दूसरा उदाहरण और भी भयानक है। 1615 से 1645 के बीच यूरोप में हुए 30 साल के युद्ध का।
अरे हाँ, वो तो इतिहास के सबसे विनाशकारी दौर में से एक था।
बिल्कुल, हम आज उस युद्ध के बारे में कम बात करते हैं, लेकिन उन 30 सालों में लगातार होते युद्ध और उससे फैली भुखमरी के कारण जर्मनी की आधी आबादी खत्म हो गई थी।
बाप रे, आधी आबादी?
हाँ, मतलब 12 मिलियन से घटकर आबादी सीधे 6 मिलियन रह गई। शहर के शहर खंडर बन गए थे।
12 मिलियन से 6 मिलियन, ये एक अकल्पनीय आंकड़ा है।
एकदम अकल्पनीय। और इन दोनों ऐतिहासिक त्रासदियों का सार यही है ना कि जब असली तबाही आती है ना तो हमारी जमा की हुई संपत्ति किसी काम नहीं आती। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कफन में जेब नहीं होती।
बिल्कुल सही कहा, कफन में जेब नहीं होती।
मुआब के लोग अपना भारी सामान ढोकर भाग तो रहे थे, लेकिन अंततः उन्हें उसी विनाश का सामना करना पड़ा। उनका धन, उनके खेत, उनके घर, सब कुछ अश्शूरियों ने नष्ट कर दिया।
मुआब के इस पूरे वर्णन में मुझे एक बात ने बहुत भावुक कर दिया। इस पूरी तबाही, भाग दौड़ और खौफ के बीच 15वें और 16वें अध्याय में अचानक आवाज बदल जाती है। वहां लिखा है, मैं रोता हूँ, मेरे आंसू बह रहे हैं। ये प्रथम पुरुष का इस्तेमाल बहुत ही झकझोरने वाला है। मैं सोच रही थी कि यशाया या फिर खुद ईश्वर एक विदेशी राष्ट्र के लिए, जो कि उनका प्रतिस्पर्धी था, उसके लिए क्यों रो रहे हैं।
ये शायद इस पूरे खंड का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। देखिए, मोआब सिर्फ एक दुश्मन देश नहीं था, ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से उनका एक गहरा जुड़ाव था यहूदा के साथ।
अच्छा, कैसा जुड़ाव?
रूत की कहानी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। रूत मोआब से ही आई थी और उसी के वंश से आगे चलकर यहूदा के महान राजा दाऊद का जन्म हुआ था।
अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
और इसके अलावा मोआब की उत्पत्ति इब्राहिम के भतीजे लूत के वंश से मानी जाती है। तो यहूदा और मोआब के बीच एक पुराना पारिवारिक सा रिश्ता था जो वक्त के साथ कड़वा हो गया था। जब यशाया या ईश्वर मोआब के लिए रोते हैं तो ये दिखाता है कि ये विनाश कोई जीत का जश्न मनाने वाला पल नहीं है। ईश्वर कभी इंसान के विनाश पर खुश नहीं होता। ये तबाही ईश्वर को भी दुखी करती है।
ये करुणा का एक ऐसा पहलू है जो अक्सर भू राजनीति की चर्चाओं में खो जाता है।
बिल्कुल।
अब तबाही से भागते हुए मोआब के ये शरणार्थी आखिरकार शरण मांगने के लिए सियोन यानी यहूदा के राजा के पास आते हैं।
बिल्कुल।
वे न्याय मांगते हैं और यहाँ से ये विश्लेषण हमें सच्चे नेतृत्व की एक बहुत ही अनोखी परिभाषा की ओर ले जाता है।
हाँ, जब मोआब के लोग सियोन में सुरक्षा मांगते हैं तो वहां वर्णन है कि एक नया सिंहासन स्थापित होगा और ये सिंहासन सैन्य ताकत पर नहीं बल्कि दो बहुत ही खास प्राचीन हिब्रू शब्दों पर आधारित होगा, हेसेद और मिशपत।
हेसेद और मिशपत, तो ये हेसेद क्या होता है?
हेसेद का कोई एक सीधा या सरल अनुवाद नहीं है। इसका मतलब है निस्वार्थ प्रेम, असीम कृपा और ऐसी वफादारी जो कभी खत्म न हो। ये एक ताकतवर व्यक्ति द्वारा कमजोर के प्रति दिखाई गई वो करुणा है।
और मिशपात का क्या अर्थ है?
मिशपात का मतलब है ईश्वरीय व्यवस्था या सच्चा न्याय। मतलब सिर्फ अदालती मुकदमों वाला न्याय नहीं, बल्कि समाज में सब कुछ वैसा होना चाहिए जैसा उसे वास्तव में होना चाहिए, जहां सच्चाई का राज हो।
यहां मेरी कैच फ्रेज बिल्कुल फिट बैठती है। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
वो कैसे?
मतलब डॉक्टर ओसवाल्ड बताते हैं कि ये महान राजा जो पूरी दुनिया को न्याय देगा, वो किसी विशाल संगमरमर के राजमहल में नहीं बैठेगा, वो बैठेगा दाऊद के तंबू में।
हाँ, दाऊद का तंबू।
रुकिए, एक तंबू क्यों? मतलब अगर कोई राजा तंबू में बैठा है तो क्या उसके दुश्मन उसे कमजोर नहीं समझेंगे? व्यवहारिक रूप से एक तंबू से इतने बड़े राज्य पर राज कैसे किया जा सकता है? एक महल क्यों नहीं?
आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। देखिए, महल हमेशा शक्ति, भारी भरकम दीवारों और अभिमान का प्रतीक होता है। महल में बैठा व्यक्ति आम जनता से कट जाता है, जबकि तंबू एक बहुत ही अस्थायी और जमीनी चीज है। इसमें सत्ता का कोई दिखावा, कोई भव्यता नहीं होती। ये विनम्रता का प्रतीक है।
अच्छा।
ये इस बात का संकेत है कि सच्चा नेतृत्व बाहरी दिखावे के बारे में नहीं, बल्कि राजा के चरित्र के बारे में है। डॉक्टर ओसवाल्ड इसकी तुलना इस बात से करते हैं कि कैसे यीशु का जन्म भी किसी भव्य राजमहल में नहीं, बल्कि एक साधारण सी गौशाला में हुआ था।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि चरित्र ही असली सत्ता है, महल नहीं।
बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत, जब इंसान अपने अहंकार में डूबकर सत्ता का दिखावा करता है तो वो हमेशा अपना ही विनाश करता है। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है।
कौन सा उदाहरण?
मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है और वो अपने अहंकार में पूरी ताकत से कांच की खिड़की पर मुक्का मारता है। क्या होता है?
कांच टूट जाएगा और उसका हाथ बुरी तरह कट जाएगा।
बिल्कुल। अब क्या उस कांच ने उस व्यक्ति को सजा दी? क्या कांच क्रूर था?
नहीं, वो तो बस एक भौतिक नियम है।
ठीक इसी तरह, जब इंसान अहंकार में आकर प्राकृतिक या ईश्वरीय व्यवस्था, जिसे मिशपत कहा गया है,
बिल्कुल,
उससे टकराता है तो वो खुद को ही लहूलुहान कर बैठता है। अशूर का विनाश कोई सजा नहीं थी, बल्कि उनके अपने अहंकार का परिणाम था।
कांच वाला ये उदाहरण सच में दिमाग के सारे जाले साफ कर देता है, लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल उठता है।
पूछिए।
क्या ये सब मिशपत, हैसेद और तंबू वाली बातें सिर्फ एक दार्शनिक विचार है? डॉक्टर ओसवाल्ड बताते हैं कि नहीं, यहाँ एक सटीक समय सीमा दी गई है, एक टिक टिक करती घड़ी।
हाँ बिल्कुल, यशाया ने भविष्यवाणी की थी कि ठीक 3 साल में मोआब का पतन हो जाएगा।
और इसकी गिनती एक मजदूर द्वारा गिने जाने वाले दिनों की तरह की गई थी, है ना?
सोचिए, जब एक दिहाड़ी मजदूर किसी अनुबंध पर काम करता है तो वह कितनी बेसब्री से अपने काम के खत्म होने का एक एक दिन गिनता है। बिल्कुल वैसे ही पूरी सटीकता के साथ हुए 3 साल गिने गए और मोआब का पतन हो गया। यह सटीक भविष्यवाणी ही ईश्वर की प्रामाणिकता का सबूत है।
लेकिन इतनी सटीक भविष्यवाणियों को देखने के बाद भी विडंबना देखिए कि लोग तब भी झूठे देवताओं की शरण में जाते थे।
हाँ, और आज भी जाते हैं। श्रोत में बैंगलोर के एक मूर्ति बनाने वाले का बहुत ही प्रासंगिक जिक्र है।
हाँ, मैंने पढ़ा था वो।
वह दृश्य इंसान की एक बेबसी को दर्शाता है। इंसान उन चीजों से सुरक्षा मांगता है जिन्हें वह खुद अपने हाथों से बनाता है, चाहे वह मूर्तियां हों या हमारे बनाए हुए सैन्य गठबंधन। इंसान ये भूल जाता है कि असली नियंत्रण उसके हाथ में कभी था ही नहीं।
तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? आधुनिक दौर में हम इसे कैसे समझें? क्या हम आज के देशों की तुलना प्राचीन इसराइल या यहूदा से कर सकते हैं?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। डॉक्टर ओसवाल्ड स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम प्राचीन इसराइल की तुलना सीधे तौर पर आज के किसी आधुनिक देश से नहीं कर सकते।
तो फिर किससे करें?
प्राचीन इसराइल की तुलना आज के आध्यात्मिक समुदायों या चर्च से की जानी चाहिए। आध्यात्मिक लोगों को अपनी नैतिकता थोपने के लिए दुनिया के राजनीतिक गठबंधनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
इसे साबित करने के लिए विश्लेषण में 1920 के दशक के अमेरिका का जो दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, शराबबंदी का दौर, उसका क्या मतलब है?
वो एक बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण है। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में बहुत ही अच्छी नीयत वाले कुछ ईसाई समूहों और नारीवादियों ने मिलकर सरकार पर दबाव डाला
ताकि पूरे देश में शराब पर कानूनी प्रतिबंध लग जाए, है ना?
हाँ, प्रोहिबिशन लागू हो जाए। बिल्कुल, उनका इरादा बहुत नेक था। वे समाज को सुधारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य को एक ऐसे समाज पर थोपने के लिए राजनीतिक और कानूनी सत्ता का सहारा लिया जो अंदर से उस मूल्य को मानता ही नहीं था।
और इसका नतीजा ये हुआ कि शराब तो बंद हुई नहीं, बल्कि इस प्रतिबंध ने पूरे अमेरिका में अंडरवर्ल्ड और मोब यानी माफिया को जन्म दे दिया।
एकदम सही। जब आप लोगों के दिलों को बदले बिना सिर्फ सरकारी डंडे के जोर पर नैतिकता थोपने की कोशिश करते हैं तो समाज विद्रोह करता है, एक काला बाजार खड़ा हो जाता है। शराबबंदी ने आम नागरिकों को अपराधी बना दिया। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब आध्यात्मिक लोग सत्ता और राजनीति का सहारा लेते हैं तो वे अक्सर एक नई तरह की अराजकता को जन्म देते हैं।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि आध्यात्मिक समुदायों को दुनिया की राजनीति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका काम महलों की राजनीति करना नहीं, बल्कि तंबू वाली विनम्रता से समाज की सेवा करना है।
बिल्कुल, प्राचीन यहूदा को यही सीखना था, और आज के समाज के लिए भी यही संदेश है कि मानव निर्मित साम्राज्यों या भौतिक संपत्तियों पर बहुत अधिक भरोसा करना रेत पर महल बनाने जैसा है।
तो चलिए हम अपने इस गहन चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे बेबीलोन का घमंड और अशूर की सैन्य ताकत आखिरकार एक बड़ी योजना के सामने बौने साबित हुए। हमने पलिश्तियों की झूठी उम्मीदों को समझा और मोआब के लोगों को अपना भारी भरकम सामान लेकर भागते हुए देखा, जो हमें सिखाता है कि संकट के समय भौतिकवाद का कोई मोल नहीं होता। और हमने अमेरिका के शराबबंदी वाले उदाहरण से ये गहराई से समझा कि राजनीतिक ताकत के जरिए नैतिकता थोपना कैसे उल्टा पड़ सकता है।
और इन सब के बीच जो एकमात्र स्थायी चीज उभर कर आती है वो है एक ऐसा नेतृत्व जो निस्वार्थ प्रेम और सच्चे न्याय पर आधारित है,
यानी हैसेद और मिशपत।
बिल्कुल, एक ऐसा नेतृत्व जो सत्ता और महल के अहंकार से दूर एक तंबू की विनम्रता में वास करता है।
और यही बात हमें वापस उस शाम की न्यूज बुलेटिन की याद दिलाती है जहां से हमने शुरुआत की थी, जब हम टीवी पर दुनिया भर के शक्तिशाली नेताओं, उनके हथियारों और उनके भव्य महलों को देखते हैं तो वो सब हमें अजेय लग सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है वो सब अंततः रेत के महल ही है।
सही बात है।
अंत में इस पूरी चर्चा से एक ऐसा सवाल उभरता है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर इतिहास का सबसे सच्चा, सबसे टिकाऊ और सबसे न्यायपूर्ण नेतृत्व किसी भव्य महल के बजाय, जहां केवल सत्ता, पैसा और दिखावा है, एक साधारण तंबू में बसता है, जहां विनम्रता, चरित्र और निस्वार्थ सेवा है, तो आज हम अपने समुदायों, अपनी कंपनियों और अपने देशों में नेताओं का चुनाव किस आधार पर कर रहे हैं? क्या हम आज भी चकाचौंध से प्रभावित होकर ऐसे महलों को ही वोट दे रहे हैं, जबकि वास्तव में इस दुनिया को सख्त जरूरत एक तंबू वाले नेतृत्व की है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।